नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति का गठन किया है। ये समिति दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच करेगी। समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें नहीं हटाया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र की प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दों तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोष, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सहकारी संघवाद पर बल दिया गया। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, मेक इन इंडिया के अंतर्गत रक्षा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और आपसी विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित है। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा प्रदान करता है। 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को लोगों के लिए विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को आज देश का 23वां राष्ट्रपति चुन लिया गया। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया है। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व कप चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिन एवानागा और की नाकाशिकी को लगातार गेम में 21-16, 21-12 से हराया। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को चीन की गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से 16-21, 5-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।